20 اکتوبر 2009 کی شام کو عشاء کے بعد قطر میں مقیم علماء تقریباً ایک درجن کی تعداد میں میرے کمرے میں اکٹھا ہوئے۔ یہ سب عمری علماء تھے، یعنی جامع دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو کے فارغین۔ قطر میں تقریباً 150 کی تعداد میں عمری علماء موجود ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی ایک باقاعدہ تنظیم قائم ہے۔ ہر عمری عالم ہر ماہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنی تنظیم کو دیتا ہے۔ یہ رقم دینی اور دعوتی ضرورت کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ یہاں ان عمری حضرات کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ آپس میں جڑے رہتے ہیں، ہر ایک پابندی کے ساتھ اور رضاکارانہ طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ ان کے درمیان مکمل اتحاد ہے۔ مختلف مدارس کے فارغین بڑے تعداد میں مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق کہیں بھی ان کے درمیان اس قسم کا اتحاد موجود نہیں۔ ان حضرات سے دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں ہوئیں۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ میرا اصل موضوع تحدیات عصریہ ہے، یعنی جدید فکری چیلنج کے مقابلے میں اسلام کے نقطہ نظر کی جدید علمی سطح پر وضاحت۔ اسی بنا پر مصر کے ایک عالم نے میری کتاب الاسلام یتحدی کا سب ٹائٹل ان الفاظ میں مقرر کیا تھا، مدخل العلمی الی الایمان۔ گفتگو کے دوران ایک عمری عالم نے کہا کہ آپ صبر اور ایڈجسٹمنٹ کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، آخر کب تک ایسا کیا جائے؟ میں نے کہا کہ صبر اور ایڈجسٹمنٹ کی اہمیت تو آپ خود اپنے تجربے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں ایک خلیجی ملک میں ہیں، یہاں یقینی طور پر آپ کے لیے ایسے مسائل ہوں گے جن کو آپ پسند نہ کرتے ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈجسٹ کرنے میں آپ کو فائدہ ہے۔ اپنے اسی تجربے کی بنا پر آپ میرے نقطہ نظر کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ایک عمومی فطری اصول ہے۔ یہ اصول جس طرح آپ کے لیے مفید ہے، اسی طرح وہ دوسرے تمام لوگوں کے لیے مفید ہے۔ میں نے کہا کہ عرب ملکوں میں باہر کے جو مسلمان رہتے ہیں وہ عملاً یہاں سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کر رہتے ہیں، جبکہ یہی مسلمان ہندوستان میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو سیکنڈ کلاس شہری بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ میرے تجربے کے مطابق یہ بات عرب ملکوں کے بارے میں تو ضرور صحیح ہے، مگر وہ ہندوستان کے بارے میں یقینی طور پر درست نہیں۔ مثال کے طور پر میں ہندوستان میں مہاتما گاندھی اور یہاں کے دوسرے ہندو لیڈروں پر تنقید کرتا ہوں۔ میری یہ تنقید یہاں کے ہندی اور انگریزی اخباروں میں چھپتی ہے، لیکن اس بنا پر یہاں میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، جبکہ اگر کوئی شخص عرب ملکوں میں وہاں کے سربراہ سلطنت پر تنقید کرے تو وہاں اس کا رہنا ہی سرے سے ناممکن ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہاں قابل ذکر ہے۔ یہ واقعہ میں نے اپنی ڈائری میں 25 جولائی 2009 کو ان الفاظ میں نقل کیا تھا۔ میرے ایک ساتھی مولانا ابو صالح انیس لقمان ندوی ابو ظہبی امارات میں رہتے ہیں۔ उन्होंने बताया कि अबू जहबी में कई हजार पाकिस्तानी मुसलमान गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। हुकूमत ने उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अनीस लुकमान साहब ने इस सिलसिले में हुकूमत से इस्तरहाम प्ली ऑफ मर्सी की बुनियाद पर हुक्म को वापस लेने की कोशिश की। आखिरकार हुकूमत ने अपने हुक्म को वापस ले लिया। अबू जहबी में पाकिस्तान के सफीर इस वाक़े पर बहुत खुश हुए। उन्होंने अनीस लुकमान साहब से कहा कि आपको हम एजाजी तौर पर पाकिस्तान की शहरियत यानी सिटीजनशिप देना चाहते हैं। अनीस लुकमान साहब ने कहा कि मैं इसको दो शर्तों पर कबूल कर सकता हूं। हम इंडिया के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी पर तनकीद करते हैं और वहां हमारी कोई पकड़ नहीं होती। क्या आप इसकी इजाजत देंगे कि मैं पाकिस्तान में वहां के फादर ऑफ द नेशन मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पर तनकीद करूं और मेरी कोई पकड़ न हो? पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि नहीं। अनीस लुकमान साहब ने दूसरी बात यह कही कि इंडिया में एक मुसलमान मुस्लिम इंडिया के नाम से मैगजीन निकालता है, क्या आप पाकिस्तान में हिंदू को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान में हिंदू पाकिस्तान के नाम से मैगजीन निकाले? पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि नहीं। अनीस लुकमान साहब ने कहा कि फिर मुझे ऐसे मुल्क की शहरियत भी कबूल नहीं। एक उमरी आलिम ने सवाल किया कि आपका एक दीनी और दावती मिशन है, फिर आप सियासी मौजूदात पर क्यों बोलते हैं? मैंने कहा कि मेरा असल मौजू तहदियात असरिया है, यानी जदीद जहन के मुताबिक इल्मी सतह पर इस्लाम की तबय्यन। मेरी तमाम तहरीरें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इसी मौजू से ताल्लुक रखती हैं। मैंने कहा कि इसी किस्म का एतराज इससे पहले सर सैयद पर किया गया था। उस वक्त इसका जवाब देते हुए मौलाना शिबली नौमानी ने लिखा था कि जो लोग सर सैयद की बाज बातों पर एतराज करते हैं, उन्होंने सर सैयद के शाहनामा में से सिर्फ मुनीजा मनम को याद कर रखा है। आज अरब मुल्कों के शहर मादी तरक्की के एतबार से यूरोप का नमूना मालूम होते हैं, लेकिन अब से सिर्फ 40 साल पहले ऐसा न था। उस वक्त अरब के लोग माशी एतबार से निहायत पसमानदा समझे जाते थे। उस वक्त बर्रे सगीर हिंद के दौलतमंद लोग अरबों को माली मदद भेजा करते थे। हैदराबाद दखन में मदीने के नाम पर एक वक्फ कायम किया गया था, जिसके वक्फ नामे में लिखा हुआ था कि इसकी आमदनी मदीने के गुरबा के लिए भेजी जाएगी। मौलाना शिबली नौमानी वफात 1914 ने 1892 ईस्वी में मिस्र का सफर किया था। उन्होंने लिखा है कि इस्कंदरिया में सड़क के किनारे अरब लोग मामूली सामान बेचते थे और अपने सामान को बेचने के लिए कहते थे बरासु सैयदन अल हुसैन। इस सिलसिले में मुझे खुद अपना एक वाकया याद आता है। मेरी नौजवानी के जमाने में अरब के फुकरा मुसाफिर के नाम पर हिंदुस्तान आया करते थे, ताकि वो यहां से अपने लिए कुछ तआवुन हासिल कर सकें। इसी किस्म के एक अरब मुसाफिर एक बार आजमगढ़ यूपी में मेरे गांव आए थे। ये गालिबन 1940 का वाकया है। मैंने उनको अपने घर ठहराया। शाम का खाना खाने के बाद वो मेरे घर के मर्दाना हिस्से में सो गए। अगले दिन सुबह को जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मा काना नौम माना बिल्लाइल, रात को मैं सो न सका। उनका मतलब यह था कि मच्छरों की वजह से मुझको नींद नहीं आई। सुबह के नाश्ते के बाद वो फिर कहीं दूसरी जगह चले गए। इसी तरह के एक अरब मुसाफिर का वाकया मेरे चचाजाद भाई मौलाना इकबाल अहमद खान सुहैल वफात 1955 ने बताया था। जिस जमाने में वो अलीगढ़ में जेर तालीम थे, वहां एक अरब मुसाफिर आया। उन लोगों ने अरब मुसाफिर को कुछ खाने की चीजें पेश की। इसके बाद मस्कूर अरब मुसाफिर ने कुछ कहा जो इन्हें इस तरह सुनाई दिया, जिब शैतान। सुहैल साहब को और उनके साथियों को इसका मतलब समझ में न आया। बार बार पूछने पर मालूम हुआ कि अरब मुसाफिर यह कह रहा था, जी बिशई थान, यानी कोई दूसरी चीज खाने के लिए ले आओ। कतर के बारे में मुझे बताया गया कि कतर के हाकिम अमीर दौलत कतर 40 साल पहले खच्चर पर सवारी करते थे। यहां कुछ भी नहीं था, मगर यहां जमीन के नीचे गैस के ज़खीरे दरियाफ्त हो गए। इस गैस के जरिए तकरीबन एक दर्जन मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। कतर गैस के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गैस की दरियाफ्त के बाद सिर्फ चंद सालों के अंदर कतर मगरिब जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। दोहा यहां का दारुस सल्तनत है। दोहा शहर को देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप यूरोप के किसी इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाके में पहुंच गए हैं। एक आलिम से मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम के मौजू पर जो कदीम अरबी किताबें हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए। मौजूदा जमाने में इस्लाम के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उनको पढ़ना गैर जरूरी है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं सिर्फ कदीम अरबी किताबें पढ़ता हूं। आजकल इस्लाम के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, मैं उनको पढ़ता ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि वो गैर मुस्लिमों में दावत का काम करते हैं। मैंने कहा कि इस्लाम अगर सिर्फ तारीख का मौजू हो तो आपकी यह रविश दुरुस्त करार पाएगी, लेकिन इस्लाम सिर्फ तारीख का मौजू नहीं है। इस्लाम की यह मंशा है कि हर दौर के लोग इस्लाम को एक अबदी सच्चाई के तौर पर दरियाफ्त करें। यह एक हकीकत है कि मौजूदा जमाना एक बदला हुआ जमाना है। कदीम दौर अगर रिवायती दौर था तो मौजूदा दौर साइंटिफिक दौर है। मौजूदा दौर के जहन को अगर आप इस्लाम की सदाकत पर मुतमईन करना चाहते हैं तो आपको जदीद उसलूब यानी मॉडर्न इडियम में बोलना पड़ेगा। ऐसी हालत में आप पर लाजिम है कि आप जदीद अफकार यानी मॉडर्न थॉट से वाकफियत हासिल करें, ताकि आप जदीद इंसान को उसकी काबिल फहम जबान में एड्रेस कर सकें। मैंने कहा कि एक काम है मुसलमानों को नमाज रोजा के मसाइल बताना, दूसरा काम है जदीद जहन को इस्लाम की सदाकत पर मुतमईन करना। مسلمانوں کو نماز روزے کے مسائل بتانے کے لیے قدیم کتابوں کا مطالعہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی دعوت کو مؤثر اسلوب میں پیش کرنے کے لیے جدید افکار سے واقفیت لازمی طور پر ضروری ہے۔